ओम शांति। प्यारे बाप दादा के अमूल्य रतन यज्ञ के सीनियर भ्राता अमित चंद भाई जी हमारे बीच में उपस्थित है, सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। भ्राता जी आपका बहुत बहुत इस सभा में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आदरणीय भ्राता जी, आपने 1958 में करनाल में ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया, जिसमें विशेष रूप में यज्ञ की पिलर्स हमारी परम आदरणीय मनर दादी आपकी टीचर रही हैं। आपका बीज बहुत पावरफुल है, साथ ही साथ में सबसे पहले 59 में आप साकार बाबा से मिले हैं और मम्मा की भी पालना, बाबा के साथ साथ मम्मा की भी पालना आपने ली है, जिसके दिव्य और अलौकिक अनुभव आपके पास प्राप्त है। और आज का आपका टॉपिक भी वही है, साकार बाबा और मम्मा के साथ के अनुभव, जो हमको बहुत अच्छी तरह से आज आपका लाभ मिलने वाला है। साथ में प्रकाशमणि दादी जी के कहने से आपने लौकिक सर्विस को छोड़ करके ईश्वरीय सेवा में अपनी जीवन 59 में ही समर्पित की हुई है। विशेष रूप में आप पंजाब जोन के सेवाओं को आप स्वयं देखते हैं, पंजाब जोन इंचार्ज है, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की टोटल सेवाओं को आप स्वयं देखते हैं, देश विदेश में भी आपने परिभ्रमणा करके अनेक आत्माओं को बाबा का मैसेज पहुंचाया है। तो ऐसे बाबा के अमूल्य रतन आज साकार माता पिता की पालना की भासना हम सभी को मिलेंगी, तो ज्ञान रतन से झोली भरेंगे आदरणीय भ्राता अमित चंद भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब भी मुझे खास साकार पालना के बारे में कुछ अनुभव सुनाने के लिए कहा जाता है तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि साकार में बाबा हमारे बहुत मीठे प्यारे बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गए और हमारी प्यारी मम्मा 24 जून 1965 को अव्यक्त हो गई। इसलिए 1965 से पहले की बातें सुनानी है और 18 जनवरी से पहले की बातें सुनानी है। आप में से कई भाई बहने तो पैदा भी नहीं, शरीर में भी नहीं होंगे, उस समय की आपको यादें दिलानी है। और अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और शांति वन या मधुबन में भी जाते हैं, पांडव वन में चक्कर लगाने, ज्ञान शोर में चक्कर लगाने, तो आपके सामने कई सीन जो नजर आते हैं वो बाद की सारी रचनाएं हैं। ये कितना बड़ा ओम शांति, ये शांति वन कितना बड़ा कैंपस है आप देखिए, और भी इसमें ऐड होते जा रहे हैं, मनमोनी वन, और इसके साथ इस तरफ भी बहुत और भवन तैयार हो गए हैं। और अभी तो आपको समाचार मिला होगा कि हमारे यहाँ पर 4-5 किलोमीटर दूर नदी किनारे जिसे हम कहते हैं, वहाँ भी लगभग 3,000 की अकोमोडेशन तैयार हो रही है, 3,000, तो वहाँ भी तो रहेंगे जाकर के। कईयों को मनमोनी वन दूर लगता है, आगे आप चलेंगे तो आपको वहाँ पर भी अकोमोडेशन वहाँ भी मिलेगी, नदी किनारे भी। जैसे जैसे विस्तार होगा तो बाबा ने कहा है वृद्धि होगी तो विधि में वधी में भी फर्क आएगा। कहा आज की, इसलिए हम कहते हैं कि वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। आज की सभा को हम लोग देखते हैं, सेवाओं को देखते हैं, हमारे जो विस्तार हो रहा है उसको देखते हैं, और वो सीन जब सामने लाते हैं कि जब हम बाबा के पास आए थे तब सेवाओं का क्या स्वरूप था, या हम पदुवन में आते थे बाबा से मिलने के लिए, ममा बाबा से मिलने के लिए, तो वो सीन सामने जब इमर्ज करते हैं तो क्या लगता है, कैसे लगता है। इतना विस्तार देश विदेश में जो पहले था ही नहीं। जब मैं ज्ञान में आया तब उस समय पर ये कोई लिटरेचर बुक्स थी नहीं। प्रदर्शनी तो बाद में बने चित्र, प्रदर्शनी के चित्र नहीं थे। ज्ञान देने का कोई साधन नहीं था, कोई साधन नहीं था। वन टू वन हम किसी को समझा करके थोड़ा सा ले आते थे, बाकी कोई साधन नहीं था सेवा का। इसलिए उन दिनों में सेवा की बजाय सेवा केंद्रों पर तपस्या के प्रोग्राम चलते थे। जो भी भाई बहने आते थे मुरली तो सुनते थे, मगर जब कोई छुट्टी का दिन आता था तब तपस्या खास। तीन तीन घंटा हमारी जो टीचर्स दादियां थी, छोटी बहने तो बाद में आई हैं, जब हम आए हैं तो उस समय सेंटर्स को निमित्त थी, वो हमारी दादियां बाद में जो कहलाई वो निमित्त थी। अब उस समय पर उन्होंने बाबा की 14 साल की तपस्या ली हुई थी, पालना ली हुई थी, सेंटर्स उन्होंने स्थापना करने शुरू हुए थे, तो इसलिए उन दिनों में योग का बहुत महत्व होता था, बहुत ज्यादा। आजकल किसी को आप बिठाओ योग के अंदर तो रिजल्ट आप सब देखते हो कैसे रहता है। 15 मिनट आधा घंटा बैठना भी कईयों के लिए कठिनाई आती है, मगर उस समय पर तीन तीन घंटा हम हर रविवार को कितने समय तक, कितने सालों तक, हमारी भट्टी हर संडे को हुआ ही करती थी 9 से 12 बजे। और उस भट्टी में विशेषता ये होती थी कि उसमें जो जहां बैठ गया वो बैठ गया, टीचर सामने बैठ गई, स्टूडेंट नीचे दरी पर चौकड़ी लगा के बैठ गए। तीन घंटे ना टीचर ने हिलना है ना स्टूडेंट्स ने हिलना है, कोई बीच में गीत नहीं बजता था, आधे घंटे के बाद आप उठ जाओ और दूसरा ग्रुप आके बैठ जाए, कुछ नहीं। और एक निराकारी स्टेज पर भी, योग की भी एक ही स्टेज होती थी, एकदम बाबा के पास निराकारी स्टेज में एकाग्र होकर के एकदम 3 आवर्स, और हमें ऐसे महसूस होता था 3 घंटे भी जैसे कि आधा घंटा भी नहीं हुआ है, ऐसी एकाग्रता की स्टेज दादियां हमारी बनाया करती थी। तो वो दिन स्थापना के, बाहर की सेवाएं मैंने कहा थी नहीं, सेंटर्स ही नहीं थे। एक शिवरात्रि का प्रोग्राम, शिव जयंती का प्रोग्राम हर साल मनाते थे हम, बस एक, और कोई प्रोग्राम हमारे पब्लिक प्रोग्राम होते ही नहीं थे। और उसमें हम हैंडबिल छुपाया करते थे। मुझे याद है कि शिवरात्रि की पहली शिव जयंती, जब मैंने, मेरे सामने जो पहली शिवरात्रि आई 59 में, फरवरी 59 में, मुझे याद है, तब हमने हैंडबिल छुपाए थे पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, और उसके अंदर हमने नीचे, ऊपर निमंत्रण तो दिया ही था, नीचे हमने हमारे भारत देश के 11 सेंटर्स थे सबके एड्रेस लिखे हुए थे, और सबको जाके कहते थे हमारी नेशनल संस्था है, 11 सेंटर है भारत देश के अंदर हमारे, इतने सम्मान से हम कहा करते थे कि हम छोटी मोटी संस्था नहीं है, हमारे सारे भारत देश के अंदर सारे भारत में सेंटर है हमारे, दिल्ली था, कानपुर था, कुछ और थोड़े से पटना था मेरा ख्याल है, अहमदाबाद, ये बॉम्बे के तो बाद में खुले हैं कुछ। तो इसलिए उन दिनों में जो है कितने आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये जो मधुबन है बाबा का, पांडव भवन, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पांडव भवन कैसा था। पांडव भवन जो है वो एकदम जैसे कि किसी के गांव में कोई जाते हैं तो परिवार का एक बुजुर्गों का घर होता है, ऐसे बाबा का पांडव भवन था। जिसके अंदर जो किचन बना हो वो भी नहीं था, ये सारा ट्रेनिंग सेंटर जो वहां पर बना हुआ है वो भी नहीं था, मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, हिस्ट्री हॉल भी बाद में बना, बहुत बाद में बना, ओम शांति भवन की तो बात ही नहीं था ही नहीं। साकार बाबा मामा के टाइम जब मैं पहली बार आया था, एक अंदर छोटा सा कैंपस अंदर, आप अगर जाएंगे पांडव भवन में तो उस तरफ तो कोई अंदर जाने ही नहीं देता है, मेरा ख्याल है कि वहां एक छोटा सा अंदर जगह है जो किचन से पहले है, जो पहले पहले दरवाजा है, जिसको आप किसी से पूछोगे तो दादी का कमरा कौन सा है, सिटिंग रूम जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आप जाएंगे तो उसके राइट साइड पर ईशु दादी और बाबा वहां पर बैठा करते थे दिन के टाइम पर कारोबार के लिए, वो अंदर में है। और उसके थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो वहां एक छोटा सा अभी भी हाल कमरा है, मैंने देखा कि अभी भी वो मेंटेन किया हुआ है, जिसमें मम्मा बाबा बैठ के मुरली चलाते थे। बहुत छोटा सी जगह है, बहुत। हम लोग जब पहली बार गए थे तो मुझे याद है कि उसके अंदर मम्मा बाबा सामने बैठे थे और हम लोग उसमें बैठे थे, हम लोग टोटल मिला करके वहां के सेवाधारी पांडव उनके मिला के पार्टियों से 35 थे, 35, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मुरली जब लिखते थे तो ये प्रिंटिंग सिस्टम नहीं था जो अभी मुरली छपती है, ये होता है हाथ से लिखा जाता था, हिंदी में हाथ से लिखते थे, स्टेंसल पेपर होता था और लिथो मशीन से ऐसे निकाल के घुमा के मुरलियां की कॉपी सेंटरों को भेजी जाती थी, थोड़े से सेंटर थे। और क्योंकि वो हिंदी में लिखनी होती थी तो वहां की जो बहनें थी वो सिंधी थी, इसलिए कोई हिंदी लिखने वाला आ जाता था पार्टियों में कभी कभी, तो उसको कहते थे भाई आप ही बाबा की मुरली हम लिखाते हैं और आप इसको लिखो हिंदी में, क्योंकि हिंदी का लिखने वाला कोई कोई मिलता था वहां पर उस समय पर। तो हम लोगों को, फिर मैं जाता था तो मुझे कहते थे आप लिखो, आपके अक्षर अच्छे हैं, उन दिनों में अच्छे होते थे तो अच्छे आप अक्षर लिखो। और फिर हम लोग क्या करते थे कि सारी मुरली लिख करके और नीचे अपने नाम से याद प्यार भी लिखते थे, सबको चली जाती थी, और लिखते थे नीचे कि मधुबन का सीजन फुल चल रहा है क्योंकि 35 पहुंचे हुए हैं वहां पर, आप अंदाजा लगाओ जरा कि क्या उस वक्त आप लोगों को लगेगा कि मम्मा बाबा मुरली चला रहे हैं और सामने 35 बैठे हुए हैं, और बाबा की मुरली ऐसे चलती थी जैसे सारे विश्व को बाबा याद कर रहा है। बच्चे देखना क्या सेंटर खुलेंगे। एक बार बाबा की मुरली में आया कि बच्चे तुम्हारे 108 सेंटर खुल जाएंगे। हम बड़े जोर से हंसे, हमने कहा 108, तब सेंटर थे सारे 12-13-15 होंगे। एक सेंटर खोलना भी उन दिनों में बहुत मुश्किल काम होता था, लोग विरोध करते थे, नया ज्ञान था, लोगों को समझ में नहीं आता था ये क्या कह रहे हैं। और बाबा कह रहा है 108 सेंटर खुल जाएंगे, अब आप देख लीजिए। तो उस समय का जैसे कि नशा और शक्तिशाली कितनी स्टेज होगी आप देखिए। बड़ा सिंपल सा, जब मैं पहली बार गया तो जब अंदर में बिल्कुल जहां मम्मा का कमरा, बाबा का कमरा, उसके अंदर एक छोटा सा हाल, अभी तो उसको शायद बदल दिया है, उसके अंदर भाइयों की खटिया लगाई हुई थी। हम लोग भाई मेरा का 12-13 होंगे वहीं ठहरे हुए थे, इधर मम्मा बाबा के कमरे, उधर हमारा अंदर वहां ठहरे थे। और स्नान करने के लिए बाहर कमरे बने हुए थे, वॉशरूम के लिए टाट लगा करके बने हुए थे कमरे, कोई लैट्रिन बाथरूम, आजकल तो कहते हैं महाराज वो जो अटैच बाथरूम के बिना नहीं हम रहेंगे किसी कमरे में, वहां अटैच हुआ ही नहीं करते थे, सारे डिटैच होते थे, अलग अलग होते थे। तो उन दिनों में क्या अंदर होता था, बिल्कुल। पर मेन बात ये था, मम्मा बाबा की पालना, बाबा जो एक एक बच्चे की केयरिंग करते थे, मम्मा बाबा, वो यूनिक था। ये मेरे बच्चे, जिसे हम आज मुरली में लिखते हैं सिक्की लदे बच्चे, कल पहले वाले बच्चे, अंग्रेजी वाले बड़ा अच्छा लिखते हैं, लॉस्ट लॉस्ट लॉन्ग लॉस्ट और नाउ फाउंड। हम सिक्की लदे का ट्रांसलेशन वो करते हैं, काफी देर के बिछड़े हुए अब मिल गए हैं, सिक्की लदे। तो उस वक्त ये फीलिंग आती थी, बिल्कुल। मम्मा बाबा के सामने बैठने से या मुर्गा बैठने से, मम्मा बाबा एक एक को ऐसे दृष्टि देते थे, प्यार से देखते थे, जैसे वाकई ये हमारे कितने 5000 साल के बिछड़े हुए बच्चे ये आ गए हैं मिलने के लिए आए। कितना प्यार मम्मा बाबा के, जैसे कल आप देख रहे थे ना, बाबा एक ही बार 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 कितने बार कह रहे थे कि ये मैं क्या देख रहा हूं, कितना बाबा हरे को देख रहा था, हर्षित चेहरे देख रहा था, चमकीली ड्रेस में देख रहा था, जैसे बाबा अपने ओरिजिनल रूप में हमें देख रहा था। ऐसे उस उन दिनों में हम लोगों को जैसे कि, और जैसे ही हम लोग वहां पहुंचते थे, अब आज दिनों में तो ट्रेन कितनी फास्ट ट्रेन हो गई है, दिल्ली से राजधानी 10 घंटे में आ जाती है, उन दिनों में छोटी लाइन, कोले वाला इंजन, हमें 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगता था दिल्ली से आबू रोड पहुंचने में। और जब हम दिल्ली से आबू रोड आते थे तो हमारी शक्ल बदली होती थी कोले के इंजन के कारण, और यहां पहुंच करके फिर स्नान पानी करके फिर बाबा बाबा से मिलना होता था। 2 दिन का जैसे एक किसी का सफर हो जाता था दिल्ली से आना भी यहां पर, इतना लंबा सफर लगता था। और यहां पर जब हम फ्रेश होकर के जब हम पहले पहले दिन आए तो बाबा के कमरे में, अभी जो बाबा का रूम बना हुआ ये आधा था, जहां तक वो कुर्सी रखी हुई है, तो अंदर आप जाएंगे जो आगे आगे कुर्सी एक रखी हुई है बाबा की गद्दी के पास, वहां तक बाबा का कमरा था, बस छोटा सा बेड वही लगा हुआ है, और बाबा की गद्दी थोड़ी सी छोटी होती थी इससे मैं समझता हूं। और थोड़े से हम होते कितने थे बाबा से मिलने के लिए, 5-7 बस, बाबा सामने आके बैठते थे और हम तैयार होकर के आके बाबा के पास सामने बैठ जाते थे, छोटा सा ग्रुप होता था। पर उस समय पर जब बाबा आके बैठते थे और बाबा दृष्टि देते थे एक एक को, साकार साकार निराकार साकार में आता था बाबा, तो उस वक्त हम जब बैठते थे और बाबा दृष्टि देते थे तो सचमुच उस वक्त ये स्टेज हरे की, भाई हो बहन हो कोई भी हो, हर एक की स्टेज ऐसी होती थी कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे। जैसे बाबा ने दृष्टि दी अपनी सीट से उठते थे और जाकर के बाबा को जाकर के पकड़ते थे बाबा को, प्यार जैसे कि बाबा की गोद में जिसे हम कहते हैं, ये नॉर्मल रूटीन हुआ करता था। इतना प्यार, इतना प्यार, आंखों में आंसू बह रहे हैं बस ऐसे। बाबा कहते थे हाँ बच्चे अब तो आ गए मिले मिले मिल रहे हो ना, अब तो मिल रहे हो ना, ऐसे हरे को ऐसे लगता था कि हम कितने समय के बिछड़े हुए बाबा से मिल रहे हैं। ये प्रैक्टिकली फीलिंग एक एक को, एक एक को जो भी होते थे सबने सब मिलते थे बाबा के साथ बैठते थे, और एक छोटा सा ग्रुप जैसे कि वहीं अंदर हम घूमते रहते थे बाबा के पास। और उस वक्त जो सारा आने जाने का सिस्टम था, ये भी आप सबको ध्यान में देते हैं कि उन दिनों में जो बाबा से पांडव भवन हम जाते थे, पांडव भवन ही था तब, ये ज्ञान सरोवर ये सब तो बाद की बातें हैं, तो जब हम जाते थे तो हमारे जाने का रास्ता कौन सा होता था, हम जब आबू रोड से बैठ जाते थे ट्रेन से उतर करके, भूरी दादी थी वो आती थी रिसीव करने के लिए, और 2 या 3 बसें सारे दिन में माउंट आबू आती थी, और बसों में ऊपर आना होता था, टैक्सियों की और कारों का तो कुछ सिस्टम ही नहीं था, होता ही नहीं था। हम वेट करते थे कि बस आएगी, उसमें बैठेंगे और ऊपर पहुंचेंगे, और वो बस जहां पर पुलिस वाला भी खड़ा रहता है, माउंट आबू आप जाओगे चौक में, वो बस अड्डा होता था, बस वहां पर रुकती थी, सब सामान हम, और उस समय सारा सामान हमें खुद लेकर के चलना होता था। अच्छा बाबा को याद करो। तो उन दिनों की जो बाबा मामा की पालना की जो बातें हैं, अनुभव हैं, उस समय पर स्थापना का कार्य, तपस्या के बाद आपने समाचार सुना होगा कि हैदराबाद सिंध में स्थापना हुई 1936-37 में, बाद में कराची में सब लोग वहां बाबा की पालना के लिए वहां चले गए थे, और 5 मई 1950 को माउंट आबू में ये सारा ग्रुप आया था, 300 से ऊपर की संख्या थी। उसके बाद अलग अलग स्थानों पर, दिल्ली में पहले आए, फिर और एक दो जगह पर गए, ये सेवाएं 1952 के लगभग शुरू हुई हैं। और मैं जब आया था 1958 में, तब सेवाओं का स्वरूप बहुत छोटा था, और मम्मा बाबा के पास भी मधुबन में भी हम लोग केवल मई जून का महीना जो गर्मियों का होता है उस समय पर ही पार्टियां आती थी, छोटे छोटे ग्रुप आते थे। सितंबर अक्टूबर में थोड़ा कोई आता था, क्योंकि उन दिनों का बरसात और विंटर माउंट का बहुत ज्यादा होता था। ये होटल वोटल कुछ नहीं थे, सारा जंगलात थी बहुत करके, इसलिए हम लोगों को मना किया जाता था पांडव भवन में कि हम लोग पांडव भवन का जो अभी गेट बना हुआ है पांडव भवन का ओम शांति भवन की तरफ, वो नहीं यूज करते थे कभी भी। लकड़ी का गेट लगा रहता था, बंद रहता था। दिन के समय पर कभी कभी मामा बाबा हम उनके साथ लेकर के कभी पहाड़ी की तरफ, इधर डक्की लेक की तरफ हमें ले जाया करते थे। हम अपने आप कोई नहीं जाता था सवेरे शाम, क्योंकि जंगल होता था और जानवर होते थे उन दिनों में। तो हमारा आने जाने का रास्ता जो होता था, ये जो किचन है, जो किचन की तरफ आप लोग कोई जाए तो नीचे रास्ता है, वहां पर उस रास्ते से पैदल हम लोग ऊपर पहाड़ी पर थोड़ी सी रास्ता है चढ़ करके, और फिर बाजार से होते हुए बस अड्डे पर हम वहां से आया करते थे, वो रास्ता होता था। और मैंने आपको बताया कि उन दिनों में सामान सब हमें अपना खुद लाना होता था, बिस्तरा अटैची वगैरह सब कुछ सिर पर रख करके वहां से बस अड्डे से उठा करके, कोई साधन नहीं होता था जो हम लोगों को, हम अपना सामान सिर पे उठा करके और पीछे के रास्ते से आया करते थे। बहुत समय के बाद मैंने आगे भी सुनाया था कि दो तीन साल के बाद हम लोग को समाचार मिला कि बाबा ने एक बैलगाड़ी बाबा ने रखी है जो बस अड्डे पर आती थी और हमारा सामान लेके जाती थी। हम इतना खुश हो गए, बात मत पूछो, जैसे हवाई जहाज मिल गया हमें, क्योंकि उन दिनों में कोई साधनों की बात ही नहीं थी। किसी किस्म का कोई साधन हो, कुर्सियां हो, सोफे हो, ये चीजें के सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ बिल्कुल तपस्या का रूप था मम्मा बाबा के वक्त उन दिनों में। बाद में थोड़ा धीरे धीरे विस्तार होता चला गया, साकार बाबा के वक्त ही हिस्ट्री आर ट्रेनिंग सेंटर ये बन गया था बाद में। मगर उस समय पर जब हम लोग आए, तब बाबा की एक एक बच्चे को जो दृष्टि मिलती थी, और हम जितना दिन वहां पर रहते थे, एक एक बच्चे की तरफ मम्मा बाबा का इंडिविजुअल ध्यान जाता था, व्यक्तिगत एक एक से मम्मा बाबा बैठते थे और उसके परिवार के बारे में, उसके जीवन के बारे में हर चीज मम्मा बाबा पूछा करते थे और गाइड किया करते थे। और उन दिनों में क्योंकि बहुत छोटा ग्रुप, मैंने कहा ना कोई पार्टी कोई पांच की आ रही है, कोई सात की आ रही है, कोई चार की आ रही है, और वो भी चार पांच पार्टियां, बस ज्यादा नहीं। इतना छोटा परिवार आप समझ सकते हैं कितना छोटा परिवार होगा। और इसलिए मम्मा बाबा उनको पालना देने के लिए एक एक बच्चे को उस नजर से देखते थे कि ये मेरे बच्चे स्थापना के आगे चल करके निमित्त बनेंगे। यहां से मम्मा बाबा से पालना लेके अपने सेंटर पर जा करके ये बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, चाहे परिवार में रहने वाले होते थे, चाहे कुमार चाहे कुमारी। एक को बाबा वारस की दृष्टि से देखता था, ये मेरा वारस बच्चा है। और एक एक में इतनी ताकत होती थी कि एक एक व्यक्ति एक एक सेंटर खोल देता था, हमने देखा है। इतनी उसके अंदर जैसे बाबा की शक्ति काम करती थी और सहयोग मिल जाता था कि उन दिनों में। इसलिए मम्मा बाबा का जो पार्ट आते थे बाबा से मिलने के लिए, एक एक की तरफ व्यक्तिगत ध्यान रहता था। इसलिए अगर हमने चार पांच दिन वहां पर रहे हैं, बाबा के पास आए हैं मिलने के लिए, पांच चार दिन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि चार पांच बार तो हमें ये चांस मिलता था, कभी बाबा के पास नाश्ते में बैठना है, कभी बाबा के साथ भोजन करना है, कभी बाबा के साथ शाम को पिकनिक करनी है। जैसे जस्ट एक ऐसा फीलिंग थी जैसे कि आप किसी अपने फैमिली में जाओ और माँ बाप जैसे बैठ करके इकट्ठे खाना खाते हैं, लाइक दैट। बहुत ही छोटा सा रूप था उन दिनों में, धीरे धीरे हमारे सामने बढ़ता चला गया फिर। मगर उस समय पर जो इनिशियल स्टेज के अंदर हम गए, तब जैसे मैं आपको वो बात सुना रहा हूं कि मम्मा बाबा का एक एक बच्चे की तरफ ध्यान जाता था। विंटर वहां उन दिनों में इतना स्ट्रांग होता था सर्दियों में, कि मम्मा बाबा दिसंबर जनवरी फरवरी में माउंट आबू में नहीं रहते थे, या तो बॉम्बे चले जाते थे या दिल्ली की तरफ चले जाते थे, क्योंकि यहाँ का विंटर उन दिनों में बहुत ज्यादा ठंडक होती थी। इसलिए फिर मम्मा बाबा बॉम्बे में भी जाते थे और दिल्ली में भी जाते थे। तो हम फिर बाबा को दिल्ली में भी मिलने के लिए, मैंने एक दो बार वहां पर बाबा को दिल्ली आए तो वहां भी मैं मिला। और मातेश्वरी जी को बाबा मम्मा को बहुत करके सेंटरों पर चक्कर लगाने के लिए भेजते थे, और मम्मा सेंटरों पर जा करके काफी दो दो चार चार दिन एक एक सेंटर पर रह जाती थी, क्योंकि उन दिनों में कोई साधन उस ढंग से नहीं होते थे। वो अपनी कारें हो, अपनी गाड़ियों हो, गाड़ियों वाले भी सेंटर पर नहीं आता था कोई भी। बड़ी सिंपल सी लाइफ उन दिनों में हुआ करती थी। इसलिए मम्मा बाबा भी जब जाते थे तो ट्रेन में ही आते थे, ट्रेन में सफर करते थे मम्मा भी बाबा भी। तो इसलिए उन दिनों में हमने देखा, मगर मम्मा बाबा की जो पर्सनैलिटी थी, जो मम्मा बाबा को साधन कुछ नहीं थे, हम आपको बताएं कोई साधन नहीं है किसी किस्म के। एक कुर्सी हमने देखी थी पांडव भवन में, जिसमें बाबा बैठते थे और यीशु दादी बैठती थी, एक दूसरी कुर्सी थी बस। कोई जरूरत नहीं समझी जाती थी, क्लास में भी चौकड़ी लगा के दरी के ऊपर बैठ जाते थे, कोई कुर्सी सोफा वगैरह ये बात की बातें है सारी, उन दिनों में इसकी जरूरत ही नहीं समझी जाती थी। मगर हर एक बच्चे को जो बाबा मम्मा जो दृष्टि देते थे या उनकी पालना का ध्यान रखते थे, वो यूनिक होता था। और हमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता था, बाबा मुरली चलाता था वो तो ठीक है, दृष्टि भी देता था, किसी बच्चे को बाबा जब सामने आके बैठते थे और ऐसे बाबा दृष्टि घुमाते थे, गीत भी थोड़ा सा बजता था, ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता था तब बजता था, तो थोड़ा सा गीत ही बजता था तो बाबा इतने में ही सबको दृष्टि दे देते थे। और जिसके ऊपर बाबा की दृष्टि पड़ती थी, हमने देखा कि उसकी अंदर की जैसे शक्ति, आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा महसूस होने लगती थी। चार पांच दिन हम मधुबन में बाबा के पास जब रह करके वापस जाते थे तो हमें ऐसे लगता था जैसे हम किसी और दुनिया से वापस जा रहे हैं। चार पांच दिन के अंदर भी जो भाई बहने आते थे, हर एक एक को व्यक्तिगत अनुभव होता था कि बाबा ने मम्मा ने मेरे से बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार किया। एक एक को ऐसी फीलिंग आती थी जब वहां से। और चार पांच दिन के बाद भी हम लोग वहां से जब भी जाते थे वापस बाबा से मिलने के बाद, तो वो कंडीशन हमारी क्या होती थी हम बता नहीं सकते आपको। एक लौकिक माँ बाप से भी बच्चे अलग होकर के इतना दुख कष्ट नहीं होता था, जिससे हमें फीलिंग आती थी कि हम बाबा से कहाँ जा रहे हैं, हम अब कहाँ जाएं, हम वो दुनिया जो नीचे की दुनिया जहां से हम आए हैं जैसे वो हमारी काम की नहीं है, और ये मम्मा बाबा के साथ के जो दिन है ये जैसे दिन ही कुछ और है। चार पांच दिन के अंदर भी हमारी लाइफ के अंदर टोटल हमारा माइंड सिस्टम, हमारा थॉट सिस्टम, हमारा एकदम चेंज हो जाता था एकदम। और धारणा में आप देखिए इस विद्यालय की क्या विशेषता है। इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता जिस आधार पर ये विश्वविद्यालय आज यहां तक पहुंच गया है, वो है पवित्रता की शक्ति। जिस चीज का ही विरोध हुआ शुरू के अंदर, शुरू से लेकर के जब से स्थापना हुई है, चाहे वो हैदराबाद सिंध में या कराची में, सबसे बड़ा विरोध का सामना जो करना पड़ा है, चाहे जब सेवाएं शुरू हुई भारत में भी, इस बात के लिए लोगों को समझ नहीं आया कि ये ज्ञान क्या चीज, ये क्या बोलते क्या है, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहते हैं कि पवित्रता ब्रह्मचर्य की पालना। अच्छा चलो कुमार है कुमारी है वो तो ठीक है, ये गृहस्थ जीवन में रहने वाला जिसने बच्चे पैदा किए हैं, गृहस्थी जीवन है, उम्र भी छोटी है, और वो अंदर उसको बाबा क्या कह रहा है, बाबा ये कहता क्या है। स्वर्ग के अंदर ये चीज नहीं है, ये बात कईयों को समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं समझ आती थी, और लोग विरोध करते थे, घर घर में झगड़े होते थे इस एक बात के अंदर। मगर जो बाबा से मिलकर के जाता था, मधुबन होकर के जाता था, बहन हो या भाई, इतना स्ट्रांग, युगल हो या कोई भी हो, इस बात के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो। जिसे कहते हैं धर्त पड़े धर्म ना जाए, ये स्टेज हुआ करती थी। और ये मम्मा बाबा की शक्ति थी, मम्मा बाबा का प्यार था, मम्मा बाबा की पालना थी, जो इतना सहज हो जाए कुछ भी नहीं, सो इजी, किसी को कोई मुश्किल नहीं लगा, अपने आप स्वतः ही स्ट्रांग हो गए, कुछ भी नहीं। जैसे ये देवधाम देव किसके किस चीज ने ये परिवर्तन लाया, इस ज्ञान की इस लाइन ने जीवन को बदल दिया कि आप देवता थे और फिर से देवता बनना है। बस ये बात जिनको समझ में आ गई, क्योंकि देवता को तो मानते हैं को संपूर्ण निर्विकारी है। चाहे भक्ति मार्ग में भी होते हुए भी लोग देवताओं को जिस ढंग से हम मानते हैं पवित्रता की शक्ति है, वो लोग भी नहीं मानते हैं, भक्ति मार्ग वाले भी नहीं मानते, वो भी कहते हैं उन्होंने भी बच्चे पैदा किए, कंट्रोल था सिस्टम वहां पर योग बल की संतान थी, ये उनको समझ में ही नहीं आता है, आता ही नहीं है। ये जो बाबा की शक्ति थी उन दिनों में, क्योंकि नया ज्ञान था बिल्कुल, भक्ति मार्ग भी बाहर दुनिया में बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था। आज से 60 साल पहले जब हम लोग बाबा के पास आए तब भक्ति में भी शक्ति हुआ करती थी। हम आपको बताएं, भक्ति में लोग बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे, अपनी मान्यताओं में स्ट्रांग हुआ करते थे। जब लोग ये बात हमारी बहनें सुनाती थी कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है या गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो लोग एकदम ऐसे समझते थे ऐसे ये हिंदू धर्म को खत्म करने वाले कहां से आ गए। इतना विरोध होता था ब्रह्मचर्य की पालना के ऊपर, तो और कठिनाई होती थी, खान पीन की शुद्धि के ऊपर, अन्न की शुद्धि के ऊपर बात आती थी, उसमें भी झगड़े होते थे। लोग कहते थे ये क्या कहते हैं, हम लोग समाज कैसे चलेगा, एक दूसरे के पास जाके खाना नहीं खाएंगे तो ये क्या, क्या, क्या कह रहे हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता था। ज्ञान के साथ साथ जो हमारी धारणाएं थी, ये सतयुग आ रहा है, देवता बन रहे हैं, ये बात समझ ही नहीं। अब कि आप कितना सहज हो गया, किसी को कोई बात की कठिनाई नहीं है। मैंने देखा लोग बड़ा सहज मानने लग जाते हैं ज्ञान को भी, धारणाओं को भी। सब हमारी छोटी छोटी बहनें सेंटरों पर आप देखिए क्या है, छोटी छोटी आयु है, 25-30 साल की कुमारियां बैठ करके गृहस्थियों को ब्रह्मचर्य के पालना की शक्ति दे रही है, बाबा उनके द्वारा दिलवा रहे, ये क्या चीज है, ये उनकी ताकत थोड़ा काम कर रही है, ये तो अंदर बाबा की ताकत काम कर रही है। उन दिनों में इस चीजों का बहुत बार दुनिया में विरोध था और बाबा का प्यार था, ये बाबा की पालना थी। हम लोगों ने देखा पहली बार, मैंने मम्मा को देखा वहां मधुबन में, तो मिला था मातेश्वर जी को या उससे पहले मेरा ख्याल शायद कि हमारे वहां पर, मैं करनाल में था और सहारनपुर में हमें पता लगा कि मम्मा आ रही है, तो हम लोग वहां से चले गए मम्मा को देखने के लिए कि मम्मा आ रही है मिलने के लिए। छोटे थे 5-7 का ग्रुप तो होता था, मुश्किल से हम आ गए हम लोग, और जैसे हम सेंटर पर पहुंचे तो पता लगा कि मम्मा स्टेशन पर आने वाली है, ट्रेन से आ रही थी, कानपुर की तरफ से आ रही थी मम्मा। हम लोग भी स्टेशन पर चले गए कि मम्मा को रिसीव करने के लिए, देखने के लिए। अब पर हम लोगों ने देखा कि मम्मा की जो पर्सनैलिटी थी, मम्मा ट्रेन से उतरी जब हमने सामने देखा, सारे स्टेशन पर लोग जो खड़े हुए थे वो भी मम्मा के साथ साथ चलने लगे, देख करके कि ये मम्मा की पर्सनैलिटी को देख करके लोग पूछने लगे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। और कईयों का दिव्य जन्म मम्मा को देखने से हो जाता था, ये पर्सनैलिटी थी मम्मा की। इतना मम्मा की जो मम्मा का ये जो उसकी प्रकृति भी थी, मम्मा की दृष्टि थी, मम्मा का जो फेस था, जैसे उसको देख करके भी लोगों को आभास होता था ये कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं है। और मम्मा सेंटरों पर जब आके दो दो तीन तीन दिन रह जाती थी, हम लोग वहीं पर ही होते थे सेंटर पर, मम्मा की पर्सनैलिटी भी यूनिक थी। भाषण तो मम्मा का क्लास तो होता ही था शक्तिशाली, पर मम्मा का जो चलना फिरना होता था इतना अव्यक्त और धीरे होता था, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम लोग वहां खड़े होते थे, हमें पता नहीं लगता थी कि मम्मा यहां यहां से गुजर गई, चली गई है, पैरों की आवाज ही नहीं होती थी मम्मा की चलने। जिसे बाबा फरिश्ता कह रहा है अभी, हम लोगों ने ये देखा प्रैक्टिकल में कि मम्मा बिल्कुल लाइट सी रहती थी एकदम, और सारे कारोबार की बाबा का ही साथ साथ मम्मा की यज्ञ के सारा संभालने वाली तो मम्मा ही थी। सेंटरों पर जब जाती थी तब मम्मा को शक्तिशाली रूप हम देखते थे, और जब मधुबन में आते थे तो मम्मा का बड़ा सिंपल सा रूप बाबा के सामने नजर आता था। तो मम्मा और बाबा ने जो अपनी दिव्यता के आधार से, अपनी क्वालिटी के आधार से उन दिनों में एक लिविंग एग्जाम्पल, जिसे हम कहते हैं लिविंग एग्जाम्पल, वो हमें सामने नजर आते थे। बाबा को देख लो, मम्मा को देख लो, औरों को भी देख लो, देखा दे आर लिविंग एग्जाम्पल। कहने की जरूरत नहीं है गुण और शक्तियां क्या होती हैं, देव गुण क्या होते हैं, शक्तियां क्या होती हैं, धीरज, शांति, अंतर्मुखता, गंभीरता, ये सारे गुण जो है हमें प्रैक्टिकल में दिखाई दे, सामने दिखाई देते थे मम्मा के अंदर में औरों के अंदर भी। तो ये उस समय की जो पालना है वो पालना ज्ञान के साथ साथ हमने मम्मा बाबा को साकार रूप देखा, साकार रूप में देखा। इसलिए तो अब जब बाबा व्यक्त हुए 18 जनवरी 69 को, वो पीरियड भी कम हलचल वाला नहीं था। तूफान जिसे हम कहते हैं तूफान, जबरदस्त सारे, चाहे उस वक्त सेंटर्स मेरा ख्याल है कि संख्या बढ़ चुकी थी 68 में, तो मैं तो 58 में एंड में आया, 68 तक भी हमारे ब्रांचेस काफी सेवाओं का विस्तार बाबा के समय तक हो चुका था। पर जैसे ही ये न्यूज मिली कि बाबा व्यक्त हो गए 18 जनवरी को, उसके बाद सारे यज्ञ के अंदर कितना हलचल हुई बात मत पूछो। क्यों, अब क्या होगा। मातेश्वरी गई 65 में 24 जून को, फिर भी बाबा बैठा रहा, बात सामने था ना, साकार में बाबा सामने था, इसलिए उस वक्त भी थोड़ी हलचल हुई, मगर बाबा बैठा हुआ था, इसलिए बाबा ने बहुत कंट्रोल किया, सबको शक्ति दी बाबा ने। तब से ये बात ज्यादा स्पष्ट हुई कि मम्मा, ये ब्रह्मा भी माँ है, बड़ी माँ है, वो साकार में माँ थी, ये ब्रह्मा माँ, इसके द्वारा शिव बाबा आकर के अडॉप्ट करता है। मगर जब बाबा व्यक्त हुए तब यज्ञ के सामने वो टेस्ट था, बड़ा जबरदस्त टेस्ट, और जिसमें उसने उसको पास किया, वो आप देखो कितनी ताकत में आ गए बाद में, बहुत ताकत पकड़ ली उन्होंने। और आज बाबा का कार्य देखो 18 जनवरी 69 से लेकर के आप लोग देखो बाबा का कार्य कितना कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। विदेश की सेवा और सब सेवाएं जो है, ये तो 74 के बाद 71-2 के बाद की सेवाओं का विस्तार हुआ है विदेश का। ये अंदर में बाबा की निराकार का काम है, ये अंदर में हम लोगों को उस दिनों में, उस समय पर जो हम बाबा के पास आए, हमारी ये फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बाबा मम्मा ने बनाई, ये निराकार का काम है, निराकार का काम है। साकार में कोई भी रहे तो ठीक है, नहीं रहे, बाबा किसके द्वारा कार्य चलवाता है। इसलिए जब 18 जनवरी 69 को हलचल हुई, तो 21 जनवरी को जब बाबा अव्यक्त बाबा गुलजार दादी के तन में आया, तब बात सारी क्लियर हुई कि क्या आगे के लिए कारोबार चलेगा और कैसे चलेगा, नहीं तो ये 2-3 दिन काफी हलचल के रहे उस समय पर। और उस समय के बाद देखो क्या हुआ, निराकार का काम है, शिव बाबा का काम है, वो किसके द्वारा भी करवा रहा है। अब आप देखो देश विदेश के अंदर, मैं कई देशों के अंदर गया हूं, और वहां मैंने जाकर के देखा अव्यक्त बाबा की पालना के आधार से वो कितना आगे बढ़ रहे हैं, उनके इतने अनुभव है, अव्यक्त बाबा के इतने अनुभव है, अपने अपने देशों में, अपने अपने शहरों में वो बैठे हुए हैं, पर बाबा का, इसलिए मैंने कई जगह पर जाकर के देखा, अपने रहने के लिए छोटा सा कमरा बेचारे रखते हैं भाई बहने वहां के, और बाबा का कमरा, बाबा का चित्र, बाबा का कमरा वो देखने वाला होता है, सारे सेंटर में से सबसे बढ़िया वो कमरा होता है बाबा का, क्योंकि उनकी बाबा पालना दे रहा, अव्यक्त पालना कर रहा हूं, अव्यक्त रूप से उनकी पालना हो रही है, उनके सामने कौन है, और उन देशों में जहां पर ब्रह्मचर्य की चीज को मानते ही नहीं है, जहां खान पीन शुद्ध होता ही नहीं है, शाकाहारी भोजन ही नहीं होता है, रशिया में मैं गया, रूस में गया, वहां पर आप देखो कैसे वहां पर जो भाई बहने जो हैं उस देश की आप खाना पीना और सब चीजें देखिए और बाबा के बच्चों को देखिए, वहां भी बाबा के बच्चे निकल रहे और पैदा हो रहे और आगे बढ़ रहे हैं। ये कौन चला रहा है, कौन है? ये है बाबा अंदर, अव्यक्त बाप दादा की पालना देश विदेश में जो है, ये बाद में देखो कितनी फैलती चली जा रही है। उस समय पर क्या हुआ, जो स्ट्रांग पिलर फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं, मैं कई दफा इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि साकार बाबा के टाइम तक जो फाउंडेशन बना इस यज्ञ का वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। उन दिनों में जो बाबा के बच्चे निकले उससे पहले पहले एक एक को आप देखेंगे उनकी, आप जितनी हमारी सीनियर बहनें हैं, दादियां हैं और हैं, इनकी फाउंडेशन, ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपने असूलों से, नो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग है। साकार बाबा ने अपने होते होते इतनी फाउंडेशन इस विद्यालय की स्ट्रांग बना दी कि उसके बाद आप देखो कितना बड़ा कार्य हो रहा है देश और विदेश में। 80 साल होने लग गए अब सेवाओं को, अब जगह जगह कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर ये मम्मा बाबा की त्याग और तपस्या, एक एक का क्या, दादियों का आप उसके बाद देखेंगे तो फिर लंबी कहानियां हैं कि कैसे उन्होंने सेंटर खोले, त्याग और तपस्या में रहे, इतनी सिंपल जीवन गुजारी और आग स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन दिनों में हम लोग कैसे सेंटर पे हमारी दिनचर्या हुआ करती थी, कैसे कारोबार चलता था, त्याग और तपस्या से। मनी मटेरियल कुछ नहीं था, नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं होता था। जिसे जानकी दादी कहती है, जेब खाली विश्व के मालिक, ये वो स्टेज हुआ करती थी। पैसा वैसा कुछ नहीं होता था, मगर बाबा का कार्य आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है, सतयुग लाना है, ये अंदर पक्का होता था। और उसके कारण सब साधन जुड़ते चले गए, सब परिस्थितियां बदलती चली गई, साधनों वाले भी साथ आते चले गए। ये तो बाद की सारी बातें हैं जो होता चला गया। और आज बाबा का कार्य आप लोग सब देख ही रहे हैं। आज अब बाबा के किस लेवल के बच्चे ज्ञान और योग में आने लग गए, साधनों की भी आप देखो क्या चीज की कमी है, क्योंकि बाबा के ऐसे ऐसे बच्चे या वारस बन रहे हैं, बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।